देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हाल ही में खत्म हुए हैं। इनमें बीजेपी ने 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, लेकिन इनमें सबसे चर्चित चेहरा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। अब इसके बाद एक चर्चा जोरों पर चल पड़ी है कि मोदी का अगला दावेदार कौन। नमस्कार, सुप्रभात, मैं शिव पांडे। आज पढ़ूंगा डीके सिंह का आर्टिकल जो बताते हैं कि मोदी के उत्तराधिकार के दावेदार तो कई हैं, लेकिन अमित शाह की जगह लेने को तो एक ही तैयार दिखते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बल्ले बल्ले है, और इधर सत्ताधारी खेमे में नंबर 2 और नंबर 3 के वोहदे को लेकर अबाध बहसें जारी हैं। इसी तरह योगी को भाजपा के संसदीय बोर्ड में शामिल किए जाने को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। याद कीजिए, राजनाथ सिंह जब भाजपा के अध्यक्ष थे तब उन्होंने साल 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में जब कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ा तो 2013 में उन्हें शामिल कर लिया गया। भाजपा के शीर्ष निर्णायक मंडल में मोदी को फिर से शामिल करने का जोरदार परिणाम सामने आया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा की शीर्ष संस्था संसदीय बोर्ड में योगी को शामिल किए जाने को लेकर इतनी अटकलें क्यों निकाली जा रही हैं। आखिर ये बोर्ड चुनाव में उम्मीदवारों से लेकर मुख्यमंत्रियों के चयन तक तमाम अहम फैसले जो करता है, ये राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मंच पर योगी का आरोहण माना जाएगा। वैसे इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं का अंत नहीं हो जाएगा। वक्त से पहले छिड़ी बहस। वस्तु स्थिति ये है कि गद्दी जल्दी खाली नहीं होने वाली है। मोदी की उम्र अभी 71 साल है और अभी वे अगले 2 लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में दिखते हैं, इसलिए योगी को इस बीच बहुत कुछ कर दिखाने का समय है। उन्होंने संघ परिवार के मूल आधार को आकर्षित कर लिया है, लेकिन तथ्य ये है कि उन्हें दूसरी बार कुर्सी बहुत हद तक मोदी के कारण ही मिली है। भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री जिस तथाकथित यूपी मॉडल के प्रति मुग्ध हो रहे हैं, वो वास्तव में अभी तैयार होने के चरण में ही है। लोकसभा में अपने 80 सांसद भेजने वाला मुख्यमंत्री बेशक महत्व रखता है, लेकिन वो शख्स भी कम महत्व नहीं रखता जिसका भाजपा के शानदार उभार में योगदान मोदी के योगदान के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है, और वो शख्स हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसलिए हम जरा धीरज रखें, मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में बहस करने का समय अभी नहीं आया है। आज सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि उनके उत्तराधिकारी को लेकर होड़ जब शुरू होगी तब उसमें कई भागीदार शामिल दिखेंगे। लेकिन भाजपा के मुख्य चुनाव रणनीतिकार अमित शाह के पद के लिए कोई होड़ नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में मतदान का अंतिम चरण 7 मार्च को पूरा हुआ, और उसके अगले दिन अमित शाह त्रिपुरा में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। वे भाजपा सरकार को एक बार और मौका देने की अपील कर रहे थे। शाह के कार्यक्रमों पर जरा एक नजर डालिए, लगता है वे कभी थकते ही नहीं। हर चुनाव उनके लिए एक मिशन है, चाहे वो पंचायत का हो, पालिका का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का। यहाँ तक कि संसद में किसी विधेयक पर मतदान की बात भी उनमें जोश भर देती है। क्या ऐसी भूमिका निभाने के लिए अमित शाह का कोई उत्तराधिकारी है? हमें जितना मालूम है ऐसा कोई नहीं दिखता। भाजपा इसको लेकर चिंतित नहीं दिखती, क्योंकि शाह अभी 57 साल के ही हैं, लेकिन भाजपा को चिंता होनी चाहिए। पहली बात तो यह कि देश के गृहमंत्री पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव की बारीक से बारीक तैयारी में उलझे नहीं रह सकते, ये सब पूरे समय का काम है। दूसरे, कोई कितना ही तेज रणनीतिकार क्यों न हो, एक ही दिन दिन पर दिन साल दर साल करते रहने से उसकी रचनात्मकता खत्म हो सकती है। इससे अंततः भाजपा की चुनावी रणनीति के भेद उजागर हो जाएंगे। अगर भाजपा को इसकी चिंता नहीं है तो अमित शाह को तो होनी ही चाहिए। अपरिहार्य होना हमेशा अच्छा नहीं होता। ये वे भी जानते होंगे कि साल 2016 में जब आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब शाह उनके उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन मोदी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक उन्होंने कह दिया था कि अमित शाह को छोड़कर बाकी नाम पर विचार कर लीजिए। अमित शाह आज भी अपरिहार्य बने हुए हैं। अगली बार जब भूमिका बदलने का मौका सामने आएगा तब वे शायद इसे अपने लिए कमजोरी बनने नहीं देना चाहेंगे। भाजपा की दुविधा, शाह के बाद कौन? भाजपा और शाह के लिए समस्या ये है कि उसके पदाधिकारियों की मौजूदा टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो सामाजिक ढांचे और उसकी खामियों को उतनी अच्छी तरह समझता हो और उसके मुताबिक राजनीतिक तथा चुनावी जुगत के लिए जमीन तैयार करता हो। कुछ पुराने पुरोधा जो ये काम करते थे वे आज खेमे से अलग हैं। भाजपा में चुनावी रणनीतिकार होने का दावा करने वाले तो बेशक कई हैं, लेकिन जब उन्हें चुनाव प्रभारी या उप प्रभारी बनाया जाता है तो शाह को उन्हें हर कदम पर रास्ता बताना पड़ता है। उन सब की ओर से कोई मौलिक आइडिया नहीं आता है। मोदी और शाह ने 2014 के बाद से जिन मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाया है उन पर जरा नजर डाल लें। योगी आदित्यनाथ सफल साबित हुए हैं, लेकिन वे चुनाव रणनीतिज्ञ नहीं हैं। वे भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश नहीं की है कि भीड़ को वोट में कैसे बदला जाता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एक अच्छी खोज थे। वे एक कुशल प्रशासक थे और जोरदार विपक्षी नेता साबित हो रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार को सकते में डाल रखा है, लेकिन पार्टी आलाकमान उनसे कुछ परहेज करता नजर आ रहा है। साल 2019 में उन्होंने अजीत पवार के समर्थन से सरकार बनाने की नाकाम कोशिश की, जिसके कारण आलाकमान को शर्मसार होना पड़ा। अमित शाह के बाद नंबर दो कौन? कुछ और मुख्यमंत्री और नेता हैं जो खुद को चाणक्य समझते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा इस खांचे में फिट दिखते हैं। भीड़ जुटाने वाले मोदी और रणनीतिकार शाह को शर्मा में अपनी परछाई नजर आ सकती है। पिछले साल असम विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार और मुख्यमंत्री पद के अघोषित चेहरे थे। जो जनादेश मिला वो पूरी तरह उनके लिए ही था। उन्हें मुख्यमंत्री बने 11 महीने हो गए हैं और वे आज असम में काफी लोकप्रिय हैं। भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में जितने लोकप्रिय हैं उनके मुकाबले अपने राज्य में वे कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें छूने के लिए कितने आतुर दिखते हैं यह गौर करने वाली बात है। लोग अपने बच्चों को उनकी गोद में डालकर सेल्फी लेते दिखते हैं। वे उन्हें प्रेम से इसके लिए मौका देते हैं। एक प्रशासक के रूप में चाहे वो वित्त विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा या कोई और विभाग, उनका कामकाज असाधारण रहा है। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में उन्हें विकास का चेहरा माना जाता था। एक राजनीतिक रणनीतिज्ञ के रूप में उनकी क्षमता पिछले सप्ताह भी उजागर हुई। राज्यसभा के चुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी UPPL ने 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। हालांकि दूसरी सीट के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, लेकिन वे दोनों सीटें जीत गए क्योंकि 8 विपक्षी विधायकों ने उनके पक्ष में वोट डाले। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी BPF ने जिस तरह वोट किया वो दिलचस्प था। भाजपा ने UPPL से गठजोड़ करने के लिए BPF को खारिज कर दिया था, जिसके कारण विधानसभा चुनाव में हाग्राम मोहिलरी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। BPF के विधायकों ने पिछले बृहस्पतिवार को भाजपा UPPL के उम्मीदवारों को वोट दिया। पिछले सप्ताह अखबारों में छपी तस्वीरों में मुख्यमंत्री शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते दिखे, जबकि अमित शाह बीच में खड़े थे। दोनों मुख्यमंत्री दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के 12 में से 6 मसलों पर समझौते का दस्तावेज लिए खड़े थे। दोनों के मुस्कुराते चेहरों से ये पता नहीं लग रहा था कि भाजपा ने हाल में मणिपुर में संगमा की नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी यानी NPP को ठुकरा दिया था। NPP को मणिपुर में दोबारा सत्ता में आई भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में जगह नहीं दी गई, हालांकि उसने उसे समर्थन दिया था। मेघालय में भाजपा के 2 विधायकों में से एक को संगमा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में मंत्री बनाया गया है। अगर NPP के अध्यक्ष मणिपुर में की गई उपेक्षा का बदला मेघालय में नहीं लिया तो इसकी एक वजह है। उनकी सरकार की कुंजी शर्मा के हाथ में है, जिन्होंने 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के सामने आने के बाद बहुदलीय गठबंधन करवाया था। शर्मा को उत्तर पूर्व में कई और दिलचस्प राजनीतिक करामात करने के लिए भी जाना जाता है। मसलन 2017 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री दिया। उनके प्रयासों से पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के सभी 33 विधायकों ने पाला बदल लिया और इस तरह पेमा खांडू के नेतृत्व में सरकार बनी और नागालैंड विपक्ष मुक्त हो गया। अमित शाह को उत्तर पूर्व में अपने सिपासालार और विश्वासपात्र शर्मा पर जरूर गर्व हो रहा होगा। फिलहाल उन्हें अपना उत्तराधिकारी खोजने की जरूरत नहीं है, न ही असम के मुख्यमंत्री निकट भविष्य में दिल्ली आने में दिलचस्पी रखते होंगे, लेकिन वे शाह का उत्तराधिकार संभालने की क्षमता का प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। इसलिए फिलहाल तो भाजपा के चुनाव चाणक्य उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे सुप्रभात के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।